ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्र की महासभा में सहभागी होकर लौटे स्वदेश। कहा, अल्पविकसित देशों को झेलने पड़ रहे नुकसानों के विषयों को रखा स्पष्टता के साथ। बाढ़ भूस्खलन के कारण अब तक 209 लोगों की हुई मौत, 29 लापता। मॉनसून जन्य आपदा में लापता हुए व्यक्तियों के परिवारों को भी राहत मुहैया कराने का आपदा व्यवस्थापन कार्यकारिणी समिति का निर्णय। और समुद्री तूफान हेलेन के कारण अमेरिका में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 60। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में भाग लेकर आज स्वदेश लौटे। स्वदेश लौटने के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि अल्पविकसित देशों को झेलने पड़ रहे नुकसानों की क्षतिपूर्ति के विषयों को उन्होंने विश्व समुदाय के बीच स्पष्टता के साथ रखा। उन्होंने कहा कि आपदा के आने से पहले भी सरकार ने सबको सुरक्षित रहने के लिए सुसज्जित किया था, लेकिन काठमांडू में इतने बड़े पैमाने पर बाढ़ आएगी इसकी कल्पना तक नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि आपदा के बाद उद्धार और राहत के कामों को सरकार ने तदारुकता के साथ किया है। प्रधानमंत्री ओली ने यह भी कहा कि सरकार और अधिक सशक्त रूप में उद्धार और राहत लगात काम को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने आपदा में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 209 पहुंच चुकी है। अश्विन 11 गति से आज दोपहर तक में आपदा के कारण 29 लोग लापता हुए हैं, वहीं 142 लोग घायल हैं। ये जानकारी नेपाल प्रहरी के केंद्रीय प्रवक्ता दान बहादुर कार्की ने दी। इसी बीच काभ्रे सिंधुली सड़क खंड अंतर्गत मंगलटार में भूस्खलन के मलबे को हटाकर अवरुद्ध सड़क को खुलवाया गया और 900 यात्रियों का उद्धार किया गया। ये जानकारी भी प्रवक्ता कार्की ने दी। आपदा व्यवस्थापन कार्यकारिणी समिति की बैठक ने मॉनसून जन्य आपदा के कारण लापता हुए लोगों के परिवारों को राहत मुहैया कराने का निर्णय किया है। आज सिंह दरबार में हुई समिति की बैठक ने कहा कि लापता हुए लोग अगर लापता होने के 10 दिनों तक नहीं मिले तो मृतक के समान ही उनके परिवारों को भी राहत रकम मुहैया कराई जाएगी। ये बात बैठक के बाद गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी ने बताई। बैठक ने राहत वितरण एक द्वार प्रणाली के तहत करने और आपदा पीड़ितों के लिए अस्थायी आवास निर्माण में 7 दिन के अंदर पहली किश्त का अनुदान जिला आपदा व्यवस्थापन समिति के जरिए उपलब्ध कराने का निर्णय किया। इसके अलावा कई अन्य निर्णय भी समिति ने किए, जिनमें खोज उद्धार, राजमार्ग में फंसे हुए यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने, ढही हुई सड़कों का पुनर्निर्माण कर सुचारू करने, आपदा के बाद फैल सकने वाली महामारी पर रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में शिविर संचालन करने लगा निर्णय शामिल हैं। नेकपा माओवादी केंद्र के प्रदेश सभा सदस्यों और संघीय संसद के सदस्यों ने आपदा पीड़ितों के लिए केंद्रीय राहत कोष में 10-10 दिन के अपने पारिश्रमिक देने का निर्णय किया है। पदाधिकारी बैठक के निर्णय अनुसार केंद्रीय राहत कोष स्थापित कर माओवादी केंद्र ने माथहत की कमेटियों को राहत जमा करने का परिपत्र किया है। ये जानकारी माओवादी केंद्र ने दी। स्थानीय तहों के जनप्रतिनिधियों को स्वैच्छिक सहयोग करने के लिए भी माओवादी केंद्र ने परिपत्र किया है। बाढ़ भूस्खलन और डुबान लगायत आपदाओं के बाद उद्धार, राहत वितरण, स्वास्थ्योपचार लगायत कामों में विलंब न करने का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। अनुगमन के क्रम में आपदा प्रतिकार्य में देरी होने से प्रभावितों की समस्या बढ़ने का उल्लेख आयोग ने एक बयान के जरिए किया है। बयान में महामारी फैल सकने के प्रति आगाह करते हुए खाद्यान्न लगायत उपभोग्य सामग्रियों में हो सकने वाले कृत्रिम अभाव लगायत को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है। बागमती प्रदेश सरकार ने आपदा में जान गंवाने वालों के परिवारों को प्रति व्यक्ति 1,00,000 रूपये का मुआवजा देने का निर्णय किया है। आज हुई बागमती प्रदेश सरकार की आपदा कार्यकारी समिति की बैठक ने आपदा में जान गंवाने वालों के परिवारों को राहत स्वरूप 1,00,000 रूपये मुहैया कराने का निर्णय किया है। ये जानकारी बागमती के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री सूरज चंद्र लामिछाने ने दी। संसदीय सुनवाई समिति आगामी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत की सुनवाई करेगी। समिति की आज हुई बैठक ने प्रधान न्यायाधीश के लिए सिफारिश किए गए राउत और बेल्जियम व ऑस्ट्रेलिया के लिए राजदूत सिफारिश किए गए क्रमशः सेवा लमसाल और चित्रलेखा यादव के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्तियों से विचार विमर्श करने का निर्णय किया है। बता दें कि प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश राउत के विरुद्ध 6 शिकायतें दर्ज हैं, जबकि बेल्जियम के लिए प्रस्तावित राजदूत लमसाल और ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्तावित राजदूत यादव के विरुद्ध 2 शिकायतें दर्ज हैं। समिति ने सुप्रीम कोर्ट के लिए सिफारिश किए गए न्यायाधीशों निरपत ध्वज निरोला और नित्यानंद पांडे के संबंध में सार्वजनिक शिकायत का आह्वान करने का निर्णय किया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजी।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्र को संचार।
अब बाकी समाचार। रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति रेडियो नेपाल और नेपाल बैंक लिमिटेड के बीच बैंकिंग सूचना एवं प्रवर्धनात्मक सामग्री प्रसारित करने का समझौता हुआ है। रेडियो नेपाल के केंद्रीय प्रसारण कार्यालय काठमांडू और प्रादेशिक प्रसारण केंद्रों के माध्यम से बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र की सूचना और संदेश प्रसारित करने के संबंध में आज वार्षिक समझौता हुआ। समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक अमर ध्वज लामा ने कहा कि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र के विषयों को रेडियो नेपाल समावेशी सामग्री के रूप में उत्पादन और प्रसारण कर आम नागरिकों तक सूचना प्रवाह करेगा। दशहरा, दीपावली लगायत त्योहार मनाने घर जाने के लिए 2 दिनों में 29,900 यात्रियों ने काठमांडू के नए बस पार्क से बसों की अग्रिम टिकटें ली हैं। बता दें कि आश्विन 12 गते को 18,365 और आश्विन 13 गते को 11,590 यात्रियों ने अग्रिम टिकटें ली हैं। सरकार ने आश्विन 12 गते से पर्व त्योहारों के मद्देनजर अग्रिम टिकट बुकिंग की अनुमति दी थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में तूफान हेलेन का कहर जारी है। अब इस तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। दक्षिण कैरोलिना में 30 लोगों की मौत के साथ सबसे अधिक मौतें दर्ज की गईं। दक्षिण पूर्वी अमेरिकी राज्यों ने हवाओं बारिश के बाद रविवार को बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू किया। तूफान हेलेन से उत्पन्न तूफानी लहरों ने बिजली को खत्म कर दिया। दक्षिण कैरोलिना, फ्लोरिडा, जॉर्जिया उत्तर में स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक तूफान के कारण कम से कम 60 मौतें हुई हैं। इनमें जॉर्जिया में बच्चों सहित 17 लोगों की मौत हो गई है। लिबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि आइन अल दिल्ब में रविवार को इसराइल के हमले में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिणी लिबनान में स्थित इस कस्बे में रविवार दोपहर को इसराइल ने हवाई हमले किए थे। शुरुआती रिपोर्ट्स में 32 लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी। इससे पहले लिबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि रविवार को देश भर में हुए हवाई हमलों में 105 लोगों की मौत हुई है। इस बीच इसराइल के रक्षा मंत्री याओब गैलेंट ने लेबनान की सीमा के पास सैनिकों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा, जो कुछ भी किया जाना जरूरी है वो किया जाएगा। इसराइल हवाई, समुद्री और जमीनी सभी तरह से बल प्रयोग करेगा। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी ने कहा है कि इसराइल के हवाई हमलों के कारण कम से कम 1,00,000 लोग लेबनान छोड़कर सीरिया चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों का जाना अभी भी जारी है। यूएन के लोग 4 बॉर्डर क्रॉसिंग पर लोगों का सहयोग कर रहे हैं। रविवार तक मिली जानकारी के अनुसार पिछले 7 दिनों में लगभग 80,000 लोग लेबनान छोड़कर सीरिया जा चुके थे। लेबनान के मंत्री नासिर यासिन के मुताबिक सीरिया जाने वाले लोगों में 36,000 सीरिया के नागरिक थे और 41,300 लेबनान के नागरिक थे। इसराइली हमले में हसन नसरल्लाह के शुक्रवार को मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम ने कहा है कि हिजबुल्लाह जल्द ही अपने नेता का चयन करेगा। हिजबुल्लाह के नेता शेख नईम कासिम ने कहा है, इसराइल के जमीनी हमले से निपटने के लिए वो तैयार हैं और समूह इसराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक डिप्टी चीफ कासिम ने कहा है कि हिजबुल्लाह अपने अभियान को जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा, ये जंग अभी लंबी चल सकती है। उन्होंने अपने भाषण के अंत में लोगों से धैर्य बनाए रखने के लिए कहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्र की महासभा में सहभागी होकर लौटे स्वदेश। कहा, अल्पविकसित देशों को झेलने पड़ रहे नुकसानों के विषयों को रखा स्पष्टता के साथ। बाढ़ भूस्खलन के कारण अब तक 209 लोगों की हुई मौत, 29 लापता। मॉनसून जन्य आपदा में लापता हुए व्यक्तियों के परिवारों को भी राहत मुहैया कराने का आपदा व्यवस्थापन कार्यकारिणी समिति का निर्णय। और समुद्री तूफान हेलेन के कारण अमेरिका में मरने वालों की संख्या हुई 60। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।